Join me on a dialogue on sisterhood, womanhood and all things parenting. Welcome to the Debina Banerjee Show. Namaste. Welcome to the Debina Banerjee Show. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में एक वेल नोन एक्सपर्ट है, डॉक्टर जिल सांगवी, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड मेंटल थेरेपिस्ट है. एकेडमिकली स्पीकिंग, शी हैज मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. शी डिड हर मास्टर्स इन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग फ्रॉम पेस यूनिवर्सिटी एट न्यूयॉर्क. शी डिड हर पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स. सो वी आर स्पीकिंग टू एन एक्सपर्ट. मेंटल हेल्थ के फील्ड में 15 सालों का तजुर्बा रखते हुए डॉक्टर जिल ने एडल्ट्स, फैमिलीज और डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम किया है. डॉक्टर जिल नैरेटिव प्रैक्टिसेस इंडिया कलेक्टिव की को फाउंडर भी हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी भी पढ़ाती हैं. आज हम डॉक्टर जिल सांगवी के साथ मेंटल हेल्थ, स्ट्रगल विद डिप्रेशन और मेंटल वेलनेस के बारे में सीखेंगे. वेलकम जिल टू द देबीना बनर्जी शो. सो यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू save people from sinking into the deep hole. तो मैंने तो अपनी तरफ से एक introduction दे दिया है audience को आपके बारे में, but I want you to introduce yourself.
Thank you and thank you Debina for having me here. So to tell you a little bit about myself, my name is Jill. I have been a mental health therapist and working in this field for the last 15 years. I have a master's in applied psychology from Mumbai University, and then I went to New York to Pace University, where I did a master's in mental health counseling. I came back to India, started working at this non-for-profit organization called Umeed Child Development Center. I have been working with disabled children. That's where I started off with, and then I moved towards working with young adults, because I was always interested in working with adults as well. My PhD was from a university in Brussels, jahan pe maine, I actually did my PhD on bringing forward voices of young autistic people. And the reason for doing this was also because a lot of the disabled narrative is around deficit stories and stories of what is not right. And what I wanted to do through my PhD was to make visible alternative stories, stories that people don't get to hear. And I think when I started working, we are all trained in very deficit narrative based training. Like when it's a disability, when it's mental health, we understand it from a very not okay space. But what happened was when I started working with young people and children, I realized that what I'm listening to inside the therapy room is not what I learned outside of it. And so I got very interested in their stories. I'm very curious as a person. So the PhD was a way to kind of bring that forward, those voices, and to bring these alternative stories. In 2020, I, along with three of my other colleagues, we started the Narrative Practices India Collective. The idea was that we believe in narrative practices. I'll tell you a lot about it as we speak. And we wanted to take narrative practices to other communities, not just working with the disabled community, but also wanted to work with other communities using these practices. So we co-founded Narrative Practices about 4 years back, 3 years back. Apart from that, I teach at the University of Mumbai. I guide students on their research projects, master students there. So that's a little bit about me and the work that I do. I work with people experiencing different problems. It can be anxiety, it can be depression, it can be talking around neurodivergence, anything that people are dealing with, a lot around grief, a lot around trauma. So
आपके सारे qualifications and wherever you have worked, ये सब कुछ सुन के at least मुझे इतना आश्वासन मिल गया है कि we are in great hands. अभी जो real problems है वहाँ से शुरू करती हूँ. नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे इतना जानना है कि आपने उसी से study किया. Further study तो ठीक है, you went on later, लेकिन आपने वो as a field of study क्यों चुना?
So long story, but I will try and be brief, I think. So, I think मैं बचपन से ना अगर मैं सोचूँ, मैं बहुत ही curious, मुझे लोगों की कहानियाँ जानना बहुत पसंद था. And मुझे याद है कि psychology था, वो interesting था मेरे लिए, but उसके बारे में मैंने जाना कहीं 8th standard में. But there were बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी. अगर मैं बचपन के बारे में सोचूँ, of course बहुत सारी कहानियाँ थी मेरी ज़िंदगी की जो बहुत अच्छी थी, लेकिन काफ़ी कहानियाँ ऐसी भी थी. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड आई वेंट थ्रू समथिंग वेरी ट्रॉमेटिक एंड आई रिमेंबर नॉट टेलिंग एनीवन अबाउट इट. मुझे पता है कि मैं किसी से मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी. ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे बात करने के लिए. ऑफ कोर्स आई हैड माई पेरेंट्स टू टॉक टू, बट वो डर जो है, वो डर काफ़ी घेर लिया था मुझे और मैंने कभी किसी से ये बात शेयर नहीं की. एंड आई रिमेंबर जब मैं बड़ी हो रही थी, मैं सोच रही थी कि काश ऐसा कोई होता जो मुझे ऐसे प्रश्न पूछते जिसकी वजह से मैं बात कर सकती. ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हेन यू गो थ्रू समथिंग एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ. ऑफ कोर्स देयर आर चेंजेस इन योर बिहेवियर, आप देखेंगे, बट वो नोटिस होना ना वो नहीं हुआ. बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अभी सोचती हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं तभी किसी से बात नहीं कर पाई. और मैं आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मी टू एंटर अ स्पेस वेयर मैं किसी से मैं कुछ कर सकूँ, जहाँ पे मैं बच्चों को, लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, उनकी कहानियाँ सुनने के लिए सुन सकूँ. क्योंकि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन आफ्टर दैट. लाइक मैं सोच रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी, ग्रेड्स एकदम से नीचे चले गए और सब पूछ रहे थे, अरे पढ़ाई नहीं कर रही है, क्या हो रहा है.
आई वाज अबाउट टू आस्क यू व्हाट आर द क्यूज, लाइक जब हम इस टॉपिक पे है ही तो एक बार पूछ लूँ कि व्हाट आर द क्यूज दैट मे बी अ पेरेंट कैन अंडरस्टैंड कि कुछ अलग हुआ है, क्योंकि अपेरेंटली बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है. सो कुछ क्या चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं?
इट कैन बी एनी थिंग. काफ़ी बार चेंजेस नोटिस होती है, काफ़ी बार नहीं होते हैं, बट इट कैन बी एनी थिंग दैट्स डिफरेंट. जैसे कि मैं, जैसे ग्रेड्स जो है वो अफेक्ट हो जाता है, कभी कभी बिहेवियर्स जो है वो अलग होते हैं. हमें जानना है कि उसके पीछे की कहानियाँ क्या है. सो आई रिमेंबर मुझे जो प्रश्न पूछे जाते थे वो थे कि क्या हुआ, वाई इज इट you know that you're not doing well, what is it, you know, kyun fail ho rahe ho aap, ya kyun aap nahi pad pa rahe ho. But you know, prashn the wo kabhi bhi focus nahi the ke what is it that you have been going through, कि क्या हुआ ऐसा जिसके वजह से आपके grades जो है, जब आप top कर रहे थे और अभी आप पास भी नहीं हो पा रहे हो या ग्रेस मार्क से पास हो रहे हो, तो ऐसा क्या है. काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मैं किसी को बोल नहीं पाई, शेयर नहीं कर पाई.
यहाँ पे एक छोटा और एक क्वेश्चन पूछूंगी. व्हाट कुड हैव बीन द क्वेश्चन, आई मीन इफ यू आर ऑन द अदर साइड, आप अगर आपके घर वाले होते तो वो सवाल क्या हो सकता था जो आपको ओपन अप करने में मदद करता.
आई डोंट नो इफ वर्क होता था कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि फियर बहुत ज़्यादा था. सो कभी कभी जब फियर बहुत जगह ले लेती है तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अगर कोई स्पेस होता जहाँ पे बातें होती कि ऐसा सब क्या है जो सही है, क्या है जो नहीं सही है, क्या है जो हमें बता सकते हैं आप, हम किसके बारे में, हाउ इज़ इट दैट यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, व्हाट इज़ इट दैट्स ओके, व्हाट इज़ इट दैट्स नॉट ओके, वो एक सेफ जगह जो हम कहते हैं ना, जो हम बना सकते हैं. सो आई थिंक दैट कम्युनिकेशन ना, जो हम अभी इट्स डिफरेंट, पहले 25 साल पहले बहुत डिफरेंट था. एंड आई थिंक अगेन आई डोंट वांट टू जनरलाइज के सभी के साथ कम्युनिकेशन डिफरेंट नहीं था, बट हम कैसे अगर कम्युनिकेशन जो है वो बचपन से ओपन रख सके, सेफ स्पेस बना सके जहाँ पे हम सभी बातें कर सके जो भी हो रहा है हमारे लाइफ में. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ, हम वरीज के बारे में बात करते हैं, हम जिस जो फियर्स है उसके बारे में, हम क्या सेफ है क्या अनसेफ है, वो सभी के बारे में बातें करते हैं. एंड आई थिंक दैट एनवायरनमेंट इज समथिंग जो हम अगर बचपन से क्रिएट कर सके हमारे बच्चों के लिए, हम जिनसे काम कर रहे हैं, अगर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन चेंज.
व्हिच इज द राइट एज टू स्टार्ट इंटरैक्टिंग ऑल दीज थिंग्स विद योर चिल्ड्रन?
राइट फ्रॉम द टाइम दैट दे आर बॉर्न वी स्पीक अबाउट एवरीथिंग, राइट? वी टीच देम अबाउट बॉडी पार्ट्स, we teach them as they're growing up, we teach them what is okay, what is not okay. When, you know, at about four and a half is when kids can start articulating, jo hum kehte hai na ke man mein kya chal raha hai, the thoughts, feeling kya ho mehsoos ho rahi hai, four and a half they start. Many kids start articulating, वो बातें करने लगते हैं. You can start as early as possible.
Sometimes I feel like say 1.5-2 year old, मैं बात तो कर रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे समझ में नहीं आ रहा है, but मुझे करते रहना चाहिए. आप बोल रहे हैं,
I think yeah, absolutely. I'll tell you an example. मेरा बेटा दो सवा दो साल का था, and I remember उसको ना stomach pain बहुत होता था, और एक बार मैंने बोला रहेगा कि अजवाइन का पानी जो है वो उससे शायद स्टमक माइट फील बेटर. थोड़े दिनों बाद वो बैठा है सोफे पे ग्लास और इसके साथ, और अंदर मैंने देखा अजवाइन और अजवाइन पानी, क्योंकि उसको पता था कहाँ पे क्या है, और उसको पता था कि उससे उसको अच्छा लग रहा है, उसने वो महसूस किया था. सो एज़ यंग हम काफ़ी बार ना बच्चों के बारे में बहुत सारी धारणाएं होती है. अगर हम देखें कि बच्चों के बारे में हम किस प्रकार से सोचते हैं, वो सदियों से चलता आ रहा, बहुत इनोसेंट होते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन हमें उनके लिए डिसीजंस लेने हैं, हमें उनको बताना है कि सही है क्या क्या गलत है. जब मैं अभी लोगों से बात करती हूँ, मैं बहुत सारा ट्रेनिंग करती हूँ मेंटल हेल्थ स्पेस में, नैरेटिव प्रैक्टिसेस में, और एक 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 ऐसा एक्सरसाइज है जहाँ पे हम बात करते हैं मूल्यों के बारे में, एंड ऑनेस्टी है, या कोई बोलते हैं टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, ऐसे अलग अलग मूल्यों के बारे में बात करते हैं.
इसको अगर हम लोग मतलब थोड़ा वर्ड्स दे के बोले, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा मूल्य और आपने कब पूछा?
सो जैसे कि मूल्य है टू हेल्प अदर्स, वो एक मूल्य है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, अगर मुझे किसी ने ट्रेनिंग में कहा. और हम फिर वो उसके वो मूल्य के बारे में और पूछते हैं कि वो मूल्य आपके लिए क्यों ज़रूरी था, वो मूल्य कब से आपने देखा, आपको कहाँ से वो मूल्य आ रहा है, आपने क्या, आप कोई कहानी हमें शेयर कर सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये मूल्य आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार से दिखता है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वो मूल्य को हम और गहरा और रिच बना रहे हैं. और फिर मैं उनसे पूछती हूँ, अगर आप पीछे जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, बचपन में चले जाए, आपने कभी देखा ये मूल्य को आपकी ज़िंदगी में आते हुए? सो काफ़ी बार लोगों ने कहा है कि जब मैं छोटी थी तब मैं मदद करती थी लोगों को बैग्स उठा के, जो ओल्ड रहते थे, और वो मैं करीबन 4 साल की रहूँगी तभी मैंने किसी की मदद की थी. तो तब से ये मूल्य की शुरुआत होती है. कभी उन्हें पता चला उसके बारे में 13, 14, 15 साल में और अवेयर हो जाते हैं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट मूल्यों के बारे में हम अगर धारणाएं देखें तो वो धारणाएं मोस्टली मूल्यों के बारे में बात नहीं करती है. लेकिन अगर हम ये जो है वो बचपन में ही टैप कर सके बच्चों के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी खुद की पहचान अलग हो सकती है. सो हम बच्चों के साथ जब काम करते हैं, हम इसके ये मूल्यों को लेके बहुत काम करते हैं, मूल्यों को लेके, सपनों को लेके, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल्य जो है वो बहुत जल्दी एग्जिस्ट करता है लोगों में.
तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जैसे अगर मेरे बच्चे पूछे तो मुझे ऐसा लगेगा कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं भी ये चाहूँगी कि दे वुड आइडेंटिफाई वैल्यूज़ मतलब ऑल दीज मतलब बीइंग मोर सेल्फ अवेयर. तो उन लोगों को भी लेके आ सकते हैं आपके पास.
एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आई फील लाइक थेरेपी नो इज फॉर एवरीवन. इट कैन बेनिफिट एनीवन. अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा भी नहीं रहा लोगों के ज़िंदगी में, लेकिन इट अलाउज यू टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स. आई नो ऑफ पीपल हुव टोल्ड मी के थेरेपी के वजह से इतनी सारी क्लैरिटी, जो क्योंकि काफ़ी बार ना बहुत सारा चलता रहता है, हम सोचते रहते हैं, लेकिन उसे बताना किसी को उसका मीनिंग जो है, टू मेक मीनिंग ऑफ व्हाट जो वो बोल रहे हैं, वो स्पेस मिलना बहुत कम होता है. तो अगर ऐसी जगह मिले लोगों को तो आई फील लाइक द वर्ल्ड विल बी सच अ जेंटल यू नो जेंटल स्पेस
टू एग्जिस्ट
टू लिव. देयर विल बी सो मच ऑफ लव एंड केयर. इमेजिन इफ पीपल फाउंड आउट दैट दे हैव ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, दे हैव दीज ड्रीम्स, दे हैव दीज होप्स, दैट दे देयर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बताना चाहते हैं उससे अलग है, तो it would be a much gentler space the world to live in.
Motherhood ke saath sabse pehle aata hai you know like depression, postpartum jisko bolte hai, postpartum naam deke bas khatam ho jata hai. Somebody believes it, somebody do not believe it, and then society usko aise treat karta hai jaise it's like as if it comes along with प्रेगनेंसी. जैसे अगर वेट पुट ऑन होता है, हाँ प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वेट पुट ऑन होता है, उसके बाद सब निकल जाएगा, मतलब वैसा. पोस्टमार्टम भी आएगा फिर चला जाएगा, मतलब ऐसा. तो आई वॉन्ट टू नो इन डिटेल्स अबाउट इट कि हाउ ट्रू इज दिस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस एंड इफ इट इज़ हैपनिंग टू मी, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ इट इज़ हैपनिंग टू अ फेलो
राइट
sister, your wife, your bahu, beti,
yeah,
anybody.
Yeah. No, और जो आपने कहा ना postpartum is very real. वो होता है, change होती है after becoming a mother. Your body changes. There is, you know, you've gone through, your body has gone through so much while giving birth to a baby. All of that is happening. And then there are other factors that then हम कहते हैं ना कि वो पोस्टपार्टम को कंट्रीब्यूट करता है. जैसे कि हमने बच्चों के बारे में अभी बात की और कैसे धारणाएं होती है, वैसे धारणाएं होती है माओं के बारे में कि एक अच्छी माँ जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए. उनको एक माँ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बच्चों के बिहेवियर्स को लेके, अपने बच्चों को के अपब्रिंगिंग को लेके,
बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके.
एब्सोल्युटली. और सब जो है वो माँ ही करती है. ऑफ कोर्स इट्स चेंजिंग आल्सो, बट ये सब धारणाएं जो है. और क्या होगा, क्या होता है कि एज अ मदर लाइक आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट यू नो वेन आई गिव बर्थ आई रिमेंबर हाउ हार्ड इट वॉज आफ्टर गिविंग बर्थ. कि ऐसे टाइम आता था जहाँ पे मैं सिर्फ रोती थी एंड आई वुडेंट अंडरस्टैंड एंड आई नो अराउंड मी वेरी सपोर्टिव पीपल बट दे ऑल्सो कुडेंट अंडरस्टैंड. उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सब तो ठीक था तो फिर रोना क्यों आ रहा था, लेकिन वो मैं टीयर्स स्टॉप नहीं कर पा रही थी. और ऐसी बहुत सारे लोग जो है, माएँ जो है, अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं. सो ये जो धारणाएं हैं ना वो काफ़ी बार बहुत प्रेशर डालती है माओ पे कि बच्चे को इस तरह से रेस करना चाहिए. बच्चे को बहुत वेल इंटेंशन लोग भी रहते हैं ना, वो एक्चुअली मैं सोचती हूँ वो हमारी मदद के लिए काफ़ी बार बोलते हैं कि क्या अच्छा है बच्चों के लिए, क्या नहीं है. लेकिन फिजिकली इमोशनली जब पोस्टपार्टम रहता है, माएँ आर नॉट इन दैट प्लेस ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स टू इवन थिंक और यू नो टू इवन बी एबल टू टेक दोज सजेशंस.
सिंपल सजेशंस लाइक उसका पेट नहीं भर रहा होगा, उसको इस तरीके से हैंडल करो, उसको इस तरीके से पकड़ो, उसको नींद आई होगी,
राइट.
मतलब माँ से ऊपर जो भी मतलब सजेशंस, मतलब सिंपल सजेशंस जो कि अच्छे के लिए होता होगा, बट उस टाइम पे वो प्रोसेस नहीं होता है बिकॉज इट्स अ फिजिकल चेंज एंड एन इमोशनल चेंज,
मेंटल, या
सडनली लगता है कि यू नो योर बेबी इज अवे फ्रॉम यू, देयर्स अ कट ऑफ कॉर्ड, एंड आई फेल्ट सडनली, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तक ये बच्चा सिर्फ मेरा था, मतलब उसका सब कुछ, सांस भी मैं ले रही थी तो हो रहा था, अभी अचानक से वो इंडिपेंडेंट है, मेरे से बाहर है और पूरी दुनिया आ गई है सजेशन देने के लिए, मेरी जरूरत नहीं है, ये जो जस्ट दिस फीलिंग दैट मेरी जरूरत नहीं है उसको ब्रीद करने के लिए, वेरी मतलब वियर्ड चीज़ कि ऑब्वियसली मेरी ज़रूरत नहीं है, बट ये छोटी सी चीज़ मेरे दिल को ऐसे मोड़ रहा था, बट आई समहाउ फेल्ट कि आई हैव टू बाउंस बैक होता है, मतलब आई हैड हेल्प, मैंने उसका भी मतलब उसका पॉजिटिव साइड देखा एंड काम की तरफ फोकस किया थोड़ा सा, क्या काम चल रहा है मेरे आसपास, जो कि अभी सोच रही हूँ तो क्या ही था पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपना अटेंशन शिफ्ट किया फ्रॉम दैट जबरदस्ती वाला जो नॉट फील गुड फैक्टर से, एंड आई फेल्ट वो जो लंबा नहीं खींचा, अभी जब सोचती हूँ उतना दिल नहीं दुखता उस टाइम पे, अब नॉर्मली दिल दुखता था,
एंड दैट्स व्हाट नो, इट फील्स लाइक कंट्रोल में नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है ना, एक तो प्रेशर फील होता है काफ़ी बार, जब हम जो करना चाहते हैं, हमने जो सोचा था कि हम किस प्रकार की माँ बनेंगे, कभी ऐसी आवाज़ भी ऊँची हो गई तो बहुत गिल्ट फील होता है कि बच्चे के साथ हमने कैसे ऐसे बात कर दिया, शेम फील महसूस होता है, बहुत सारी ऐसे अलग अलग इमोशंस है, और काफ़ी बार ना फिर यही सारी जो चीज़ें हैं बहुत अकेला महसूस भी करवाती है, इसके लिए वो कम्युनिटी जो है इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दैट इट्स ओके टू एक्सपीरियंस इट, दैट वी हियर यू, दैट देर आर ऑल ऑफ दीज स्टोरीज, काफ़ी बार क्या होता है ना, ये कहानियाँ जो होती है वो मेन स्ट्रीम नहीं होती है, कि द स्ट्रगल्स दैट वी गो थ्रू एज मदर्स, या जो हो रहा है दिल में वो टाइम पे, वो कहानियाँ बहुत विजिबल नहीं होती है, विजिबल होती है ओके दैट यू नो दिस हैपेंस,
सो द प्रॉब्लम स्टिल हो गया है, हाँ, कि जैसे पैदाइश होते ही बिल्कुल जिस तरीके से रिलीजन के बारे में सिखाया जाता है हमें, everything. बहुत कुछ के बारे में सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से होना चाहिए,
एब्सोल्युटली,
और अगर हम किसी और को देखते हैं ऐसा नहीं करते हुए, हम खुद उसको पॉइंट आउट करते हैं दैट इट इज रॉन्ग, एंड इफ आई बिलीव 80% औरतों को अपना सारा काम करना होता है, तो वो अपनी मदरहुड की जर्नी विदाउट फीलिंग प्रेशराइज्ड कैसे कर सकते हैं,
एंड आई फील दैट डिपेंड्स ऑन हाउ इज इट दैट दे वांट देयर मदरहुड जर्नी टू बी, मैं जब माओं से बात करती हूँ, हम बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या आशाएं हैं, उनके क्या सपने हैं, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो फिगर आउट होगा, वील हैव कॉन्वर्जेशंस, बट वॉट इज
क्लियर,
What is it that you want? Because no one really asks a mother that what is it that you want? They know that, you know, bachcho ke liye karna hai. They know, but mothers know what is happening, what is it that they're going through.
How important it is it to take that step? मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे क्या चाहिए, आधे से ज्यादा डर तो मुझे समाज का ही लगता है कि वो क्या बोलेंगे, मतलब दे विल बैजर मी विद देयर कंप्लेंट्स, सिंपल थिंग जैसे कि मैंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया, मुझे आज भी 1001 लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, व्हाई एम आई देबीना बनर्जी एंड नॉट देबीना चौधरी, मुझे ऐसा लगा एज अ वुमन आई एम बॉर्न विद इट, व्हाई व्हाट इज द हार्म इन you know having that
right,
logo ko bolna padta hai ki ek law pass hua hai jahan pe even after marriage you can hold your surname, mujhe to ek bar ek courier wale ke sath ladai ho gayi thi kyunki mujhe courier hi nahi dena chahta hai, maine bola this is my maiden surname and this is my आफ्टर मैरिड सरनेम ऑल्सो मेरे पास हस्बैंड के पासपोर्ट में भी वाइफ के जगह पे ये नाम लिखा हुआ है. तो सोसाइटी को हैंडल करना इज अ बिगर स्ट्रेस आई थिंक.
जैसे आपने कहा ना कि एंड दीज थिंग्स राइट इट मे सीम स्मॉल बट इट्स नॉट स्मॉल. Your surname is a part of your identity. You've decided to keep it, right? And this is what I'm saying more from experience also when I have spoken to women that ek bar wo aur clear ho jata hai na, wo alag hum ye map ki tarah dekhte hai. It's like maps, you know. There are all of these territories, alag alag jagah hai jahan pe hum ja sakte hai. Koi linear way nahi hai jaane ke liye ki hum aage aise chalenge aur hamare piche aise waise nahi. Lekin hum अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हैं. और जब हम वो टेरिटरी को और गहरा करेंगे और रिच बनाते हैं तो फिर ये जो चीज़ें हैं लोग जो बोलते हैं एंड लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्कोर्सेस टू अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय दीज डिस्कोर्सेस. ये धारणाओं से घिरे हुए हैं सभी और वो इसीलिए ये सब बोलते हैं. सो वो जब क्लैरिटी आने लगती है ना तो द इफेक्ट इज नॉट दैट मच बिकॉज दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. वॉट आई बिलीव इन वॉट आई स्टैंड फॉर देर आर पीपल देर आर वॉइस दैट सपोर्ट मी इन माई जर्नी एंड दिस इज वॉट्स मोर इम्पॉर्टेंट. दिस आई नो द प्रॉब्लम इज इन द डिस्कोर्सेज दैट वी लिव इन एंड आई नो दैट पीपल विल से थिंग्स बट वॉट इज इट दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड दैट ट्रांजिशन नो that reducing the influence of what the problem, the discourses is trying to do, because people are carriers of it. The problem is in the system.
अगर हम लोगों को पता हो कि ऐसी भी हो सकता है और ये भी normal है तो we have examples to lead by and Absolutely. We go towards that. ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब ये तब छोटा हो जाता है, ये problems छोटे हो जाते हैं क्योंकि हम उससे अपना शैकल्स तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं. वी हैव द पावर टू चेंज आवर ओन लाइफ. जस्ट आइडेंटिफाई वॉट यू वॉन्ट एंड डू इट. सिस्टम के प्रेशर में आके उसी मतलब दौड़ में जाने की जरूरत नहीं है.
एंड टू आइडेंटिफाई व्हाट द सिस्टम्स आर डूइंग.
हाँ, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई द सिस्टम आपने आधा प्रॉब्लम आपने खुद देख लिया है.
या यू हैव टेकन द पावर अवे बिकॉज नाउ यू नो दैट इट्स द सिस्टम्स दैट्स डूइंग इट. सो यू नो हाउ इट्स वर्किंग, यू नो हाउ द प्रॉब्लम इज ऑपरेटिंग इन योर लाइफ.
सो जो लोग मुझे लिखते हैं यू नो उनको अभी अभी बेबी हुआ है और शी इज नॉट लाइकिंग एनीथिंग अबाउट इट. बिल्कुल उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. शी इज़ फीलिंग स्टक अप टाइड अप एंड ओवरऑल ही बैड अबाउट द होल सिचुएशन. दिस इज पोस्टमार्टम. इफ यू हैव टू आंसर हर आप क्या बोलेंगे.
इफ एंड फीलिंग वेरी बैड राइट अबाउट लाइक एंड नॉट फीलिंग गुड अबाउट हरसेल्फ.
मेरा काम बंद हो गया है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. दीदी मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. आपको देख के ऐसा लगता है आप मदरहुड को इंजॉय कर रहे हो एंड मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. मुझे मतलब आई एम टायर्ड, मुझे ये फेज अच्छा ही नहीं लग रहा है.
राइट. सो व्हेन समवन टेल्स मी दैट नो आई आस्क देम अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम इज डूइंग, हाउ इज इट मेकिंग देम फील, व्हाट इज द व्हाटएवर शी स्पीक्स अबाउट राइट. इफ इट्स गिल्ट, इफ इट्स शेम, इफ इट्स नॉट फीलिंग गुड, टू हैव अ स्पेस टू टॉक अबाउट दैट एंड वेयर दैट मे बी कमिंग फ्रॉम. बट एट द सेम टाइम ऐसी कोई चीज़ें हैं जो उनके लिए ठीक जा रही है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो करने से उन्हें अच्छा लगा. ऐसा भी इट कैन बी एनीथिंग ना. इट कैन बी जैसे आपने कहा दो मिनट के लिए मैंने आसमान की तरफ देख लिया और मुझे अच्छा लगा, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. मैं उसके बारे में उनको पूछूंगी अगर वो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है. इट कैन बी समथिंग वेरी स्मॉल बट वी बिलीव दैट देयर इज़ नथिंग स्मॉल.
Sometimes I'm, you know, I just sit and look at the TV and actually watch nothing. Yeah. I'm just sitting and doing time pass. I'm just not watching anything. But I like that. And I have identified that.
Yeah.
Then I'm not watching any content. Yeah. I'm just, the TV is on, switched on in front of me. If somebody walks into the room and asks, what am I watching? I would actually look at the TV and say, नहीं चला लो कुछ भी मतलब चल रहा है टीवी आई एम नॉट वॉचिंग एनीथिंग बट दैट इज माई आई नो आई हैव आइडेंटिफाइड या दिस इज माई टाइम आई फील गुड अबाउट इट एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम इफ आई एम वॉट एवर आई एम वर्किंग विच एवर स्पेस विद फॉर माई चिल्ड्रन और फॉर माई सेल्फ आई एम डूइंग दैट बट दैट इज माई टाइम एंड आई आइडेंटिफाई दैट एंड आई फील गुड अबाउट इट आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन कतार मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि यू नो पोस्टमार्टम सिर्फ मतलब हमारे आसपास ही है इंडिया में है शी सेड ऑन हर इंस्टाग्राम एक्चुअली शी लॉस्ट अ चाइल्ड ऑन द डे ऑफ द बर्थ मतलब जिस दिन हर वाटर ब्रोक एंड शी गेव द न्यूज़ आउट द इन अनदर टू डेज दैट शी लॉस्ट द चाइल्ड शी गेव बर्थ टू अ स्टिल बर्थ उसके बाद She again became pregnant in a couple of months and she delivered a baby girl. And uske baad she went off social media for 6 months. And when she came back, unhone kaha that she was going through a huge, postpartum depression. Aur unko kuch bhi achha nahi lagta tha. Kuch bhi nahi. She went into a dark hole. Phir unki nani, mummy, सब कुछ मिल के मतलब दे वर्कड थिंग्स आउट टुगेदर एंड शी केम बैक आई वॉन्ट टू नो कि यू नो हमेशा जो सोसाइटी का प्रेशर है हम इंडिया इंडियन सिनेरियो में देख रहे हैं ये औरतें ऑल ओवर
एक्सपीरियंस
कर रहे हैं
नो एब्सोल्युटली इट इज नॉट जस्ट लोकेटेड हियर राइट पोस्टमार्टम है इट्स अक्रॉस विमेन गो थ्रू इट मदर्स गो थ्रू इट like I said, it shows up in different ways. For some people, it lasts much less. For some people, it lasts longer. But I think what is very, bahut important hai ki hum, jitna bhi time a mother needs to take care of herself, to give her the support through communities, through people, having people who are supportive is very very important so it's not just something that exists here in India it's something that you will see across different places different countries it exists there is no two ways about it yeah
डिप्रेशन को अगर हम लोग क्लिनिकली एक बीमारी बोलते हैं जैसे हम सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई करते हैं अगर हम इसको भी एक बीमारी बोल रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि दूसरी बीमारियों के लिए अगर जैसे हम खुल के एक्सेप्ट करते हैं मुझे ये हुआ है मुझे इसकी डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे ये बीमारी हुई है और मुझे उसके डॉक्टर के पास जाना इसको अगर हम नॉर्मलाइज करना चाहे तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी बीमारी किसी कारण होता है मतलब सी एक्सपोजर टू वायरस बैक्टीरिया तो उसमें एंटीबायोटिक लेते हैं एंटीवायरल लेते हैं कोई मच्छर काटने से कुछ होता है तो डिप्रेशन भी क्या वो ऑटोमेटिकली आता है मतलब आउट ऑफ नोवेयर और इट हैपेंस फॉर अ रीज़न मतलब किसी चीज़ के कारण से होता है मतलब I just want to
understand. Yeah. No, and it can happen because of so many reasons, right? Like we went going back to where the problem comes from. It is systemic that somewhere I'm not fitting in, I'm not being able to live like others. But also because it's so clearly defined and aise ek box mein rakha gaya hai usko, that it's protected, no, in some way that this is what people should aim to be. And those who are not in this are all those, you know, outside. And then what happens? What about their stories?
Their stories could be two, right? Idhar se mujhe aisa lag raha hai. One is who has the capacity to live out of the box and identify that, yes, I am out of the box and I don't want to fit in. And people who want to fit in,
absolutely,
they suffer from depression. I'm not talking about anybody, everybody. I'm talking from the cues from my life only. Mujhe aisa lagta hai ki kuch young people hai mere इर्द गिर्द से ही एग्जाम्पल लेके मैं बोल रही हूँ कि दे टेक डिप्रेशन वर्ड वेरी लाइटली हर बात पे यू नो आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन मुझे थेरेपी की ज़रूरत है आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन तो आई वॉन्ट टू नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग मतलब इस वर्ड को बहुत कैजुअली ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है
आई फील लाइक जब यूज़ करते हैं ना तो देर इज़ अ रीज़न वाई दे आर यूजिंग इट राइट. द यंग जनरेशन या जो भी यूज़ कर रहा है, ऑफकोर्स अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है अभी. अर्लियर ये सब टैबू बहुत था ना, कोई बात नहीं करता था मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में. बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ पीपल हैविंग एक्सेस टू इतनी सारी स्टोरीज, people are able to relate to it more. So I feel like when people share also na that they are feeling depressed or that mujhe depression ho raha hai, mujhe therapy ki zarurat hai, I feel like there is something that they are going through because of which they are saying it.
To unko again society banke daba nahi daba ke usko ek ear dena chahiye.
Absolutely. That what is it that is happening, that what is it that you're experiencing, what is it that you're feeling, to know the story, I feel like is very important, because we can't say, you know, what someone is going through, but this is a way in which they're expressing it. It's a lot more now because I feel like social media, awareness, all of that is more. So that's why it's more visible now.
It's so beautiful. Actually, मुझे आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो है कि आवाज़ें तो है, अच्छी आवाज़ भी है, बुरी आवाज़ भी. आवाज़ को शट डाउन नहीं करना चाहिए. यू वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी आवाज़ को मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, दैट इज़ द हेल्पिंग आवाज़, एंड कौन से आवाज़ को बंद कर देना है. फॉर मी इट इज़ द ट्रोल्स जो मुझे अननेसेसरी ऐसे पुट डाउन करने की कोशिश करते, मुझे वो नहीं सुनना, मैंने उसको वॉल्यूम डाउन कर दिया. एंड दैट मेक्स मी फील beautiful. And also society ka box, mummy ko bhi ek certain way mein hona chahiye, ek bacche ko aise hona chahiye, ek beti ko aise hona chahiye. Aap jahan se usse thoda sa aage piche ho jate ho, wahan pe aapko bura feel karaya jata hai. To aap wo wali awaaz ko suno, whether you really want to fit in, and if you feel good about it, then do it. If that is not making you feel good about
absolutely.
It don't do it.
Yeah. So beautifully you put it.
Oh my God, I hope. इस विषय में मैंने बहुत ज़्यादा कभी सोचा भी नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बेशरम जैसे ये सवाल पूछी आपको कि जो लोग, जो यंगस्टर्स बोलते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड, वो क्या फैशनेबली बोल रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा भी लोगों के लिए लगता था. आई वॉज रॉन्ग, और उस चीज़ को एडमिट करना भी बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ आई एम द सोसाइटी फॉर दोज पीपल नाउ, आई विल गिव देम अ चांस, आई विल गिव देम एन ईयर, एंड आई विल डेफिनेटली गिव देम सपोर्ट टू सीक हेल्प जो भी मेरे दायरे में होगा, इंस्टेड ऑफ जो मेरे दायरे में नहीं है उसको वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे नहीं सोच के. एंड आई होप इफ यू आर वन हु इज सफरिंग एट द मोमेंट, एंड इफ यू गॉट योर आंसर्स इन दिस एपिसोड, आई एम ग्लैड. एंड इफ यू हैव नॉट, देन शी इज ऑलवेज देयर. बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फैक्टर उन्होंने बहुतों के नाम नहीं ले पाए, बट शी वॉज सो हैप्पी, हर आईज वर ट्विंकलिंग एट द मेंशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैज हैपेंड विद द पीपल दैट शी वर्क्स विद. बट हम लोग कह नहीं पाए, आप चाहें तो आप उनके पास भी जा सकते हैं. एंड एनी वे, इफ आर पॉडकास्ट हैज हेल्प्ड यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट द दिबीना बॉनर्जी शो. And thank you so much.
Thank you. It was beautiful.
The Dibina Banerjee Show, brought to you by Pegboard.